आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी मंडलों में खोले जाएंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री। विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत और किसानों को मुआवजा वितरित करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी अब मोबाइल फोन पर ही होगी उपलब्ध। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर। प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और बरसात को देखते हुए पीलीभीत में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल प्रदेश के सभी मंडलों में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन सभी स्पोर्ट्स कॉलेजों में पूर्व ओलंपियन, कॉमनवेल्थ, एशियाड और नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को कोच बनाकर नए खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। खेल दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया से फिट इंडिया मूवमेंट तक, सांसद और विधायक स्तर की प्रतियोगिताओं तक देश में खेलों की एक नई क्रांति आई है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखकर के प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 570 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तुष्टिकरण के बजाय संतुष्टिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। इसके चलते पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज को खत्म कर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि यहां का आंवला अब दुनिया भर में पहुंच रहा है।
माँ बेला देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। श्री योगी ने सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने और प्रभावित किसानों को शीघ्रता से मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ साथ आगामी माह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के संबंध में भी बैठक कर अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सारी तैयारी पूरी करने पर जोर दिया। उनके इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी संभावित है। मुख्यमंत्री ने दूसरी बार गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण प्रभावित हुए लोगों से राहत शिविर में जाकर उनका हाल चाल जाना और इस मौके पर उनको सहायता भी प्रदान की और बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन भी किया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान कल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की गति और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की धरोहर इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है तो उसमें उत्तर प्रदेश की व्यापक भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचन व्यवस्था का मजबूत होना ही इस दिशा में सबसे बड़ी गारंटी है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो हर संस्था अपने आप ही संवेदनशील बनती है, विकास के प्रति आग्रही बनती है। इस अवसर पर यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है, भविष्य को देखने का कार्य है, क्योंकि हमारा भविष्य प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि 2047 तक आते आते भारत विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, तो विकसित उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन 2022 बैच के 70 नवनियुक्त प्रशिक्षु सिविल न्यायाधीशों से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि न्यायपालिका का दायित्व केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को समझकर संवेदनशील निर्णय लेना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने गूगल प्ले स्टोर पर नया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। SSSC नाम के इस ऐप से अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। आयोग के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब नए मोबाइल ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा जनपद की सूचना, प्रवेश पत्र, परिणाम और अन्य जरूरी अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर ही आसानी से देख सकेंगे। उधर परिवहन निगम ने UPSSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 11,000 से अधिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। लखनऊ के 100 पार्कों में 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने CSR फंड का उपयोग करेगी। इस पहल की शुरुआत कल लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित झंडे वाला पार्क में हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री AK शर्मा, राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, महापौर सुषमा खरकवाल और विधायक नीरज सिंह मौजूद रहे। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के मुताबिक अब तक प्रदेश में 1,796 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 1,273 मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। इस बीच प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री KP मलिक ने कल अमरोहा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। उधर बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ और बरसात को देखते हुए पीलीभीत के जिलाधिकारी ने आज कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कल पहले दिन के मुकाबले चीन को 4-3 से पराजित कर दिया। भारत की तरफ से शानदार खेल दिखाते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी मंडलों में खोले जाएंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री। विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत और किसानों को मुआवजा वितरित करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी अब मोबाइल फोन पर ही होगी उपलब्ध। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर। प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और बरसात को देखते हुए पीलीभीत में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।